अध्याय 14 गुओमिंतांग का उत्थान एवं पतन। राइज एंड फॉल ऑफ गुओमिंतांग। यह अध्याय दिल्ली विश्वविद्यालय के चीनी एवं जापानी अध्ययन विभाग के प्राध्यापक श्रीमती चक्रवर्ती के द्वारा लिखा गया है। पृष्ठ संख्या 219। गुओमिंतांग चीन का प्रथम आधुनिक राजनीतिक दल था। प्राचीन चीन की राजनीतिक संस्कृति में स्वतंत्र राजनीतिक संस्थाओं के उदय और विकास के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध नहीं था। सम्राट प्रथा, इम्पेरर सिस्टम की तानाशाही ने किसी भी खुले तथा व्यवस्थित विरोध को पनपने का मौका नहीं दिया। यह एक जाना माना तथ्य है कि चीन में व्यवस्थित राजनीतिक विरोध गुप्त रूप से होता था। अतीत काल से ही चीन में गुप्त संस्थाओं का प्रचलन था, जिन्होंने अनेकों विद्रोहों को जन्म दिया। चीन में डकैती की संस्था विश्व में अन्य स्थानों की भांति राज्य और समाज के विरुद्ध एक प्रकार के सामाजिक राजनीतिक विद्रोह के रूप में उभर कर सामने आई। कुओमिंतांग, जो चीन का प्रथम राजनीतिक दल था, का उदय भी गुप्त संस्थाओं में से ही हुआ। एक गुप्त संस्था से राजनीतिक दल का रूप धारण करने में कुओमिंतांग को एक दशक से अधिक समय लगा। इसके संस्थापक और मुख्य नेता सुन यात सेन थे। सुन ने पहले हवाई यानी अमेरिका में 1894 ईस्वी में सिंग चुग हुएई नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था के सभी सदस्य प्रवासी चीनी थे, जो चीन के भविष्य को लेकर चिंतित थे। उनका मत था कि पेचिंग की छिंग सरकार तथा चीन का उल्लंघन कर रही साम्राज्यवादी शक्तियों को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए। राष्ट्रवाद की भावना इस संस्था द्वारा ही जागृत की गई थी। इसके प्रथम घोषणा पत्र में ऐसी भावना स्पष्ट नजर आती है, जिसमें प्रवासी चीनियों ने अपनी आशंका को व्यक्त करते हुए कहा, हमारा राष्ट्र विघटन और विभाजन का सामना कर रहा है। आवर नेशन इज फेसिंग डिसमेंबरमेंट एंड डिसइंटीग्रेशन। सिंग चुंग हुएई हांगकांग में काफी सक्रिय थी और प्रजातांत्रिक सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए इस संस्था में नियमित रूप से चुनाव करवाए जाते थे। समाचार पत्र छापना, स्कूल चलाना, राजनीतिक शिक्षा का आयोजन करना तथा चीन में क्रांतिकारियों की मदद के लिए पैसे जमा करना इस संस्था के मुख्य कार्य थे। इस संस्था ने किसी विशेष राजनीतिक प्रणाली के बारे में विस्तृत रूप से तो विचार नहीं प्रस्तुत किए थे, लेकिन इसने चीन के लिए संवैधानिक राजतंत्र को बढ़ावा दिया। विभिन्न क्रांतिकारी दलों के शिंग चुंग हुएई में मिल जाने के फलस्वरूप 1905 ईस्वी में टोक्यो में थुंगमुंग हुएई की स्थापना की गई। थुंगमुंग हुएई की विचारधारा का आधार सुन यात सेन के तीन जन सिद्धांत जनराष्ट्रीयता, जन संप्रभुता तथा जन आजीविका थे। निसंदेह सुन यात सेन थुंगमुंग हुएई के ऐसे निर्विरोध नेता थे जिनके नेतृत्व में इस संगठन ने आरंभ से ही चीन में छिंग विरोधी गतिविधियों का सक्रिय रूप से समर्थन किया। थुंगमुंग हुएई ने चीन की 1911 ईस्वी की क्रांति, जिसने छिंग वंश का तख्ता पलटा और राजतंत्रीय प्रणाली का अंत किया, में मुख्य भूमिका निभाई। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उन दल बदलू सैन्यवादियों जिन्होंने छिंग सरकार का साथ छोड़ा था ने छिंग वंश के पतन में घातक भूमिका निभाई थी। लेकिन फिर भी सुन यात सेन तथा उनके सहयोगियों के कार्य को नकारा नहीं जा सकता। 1911 ईस्वी की क्रांति के बाद थुंगमुंग हुएई ने कुओमिंतांग राष्ट्रीय जनदल का रूप धारण करके वैध रूप से कार्य करना आरंभ कर दिया। अब इस दल ने अपने गोपनीय लक्षणों को त्याग कर एक आधुनिक राजनीतिक दल की गतिविधियां अपना ली। सुन यात सेन नव स्थापित चीनी गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति बनाए गए और इससे इस दल को और भी मान प्राप्त हुआ। दूसरी ओर सैन्यवादियों जिन्होंने छिंग वंश के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ने भी अपनी शक्ति को बढ़ाने की भरसक कोशिश की। युवन सरखाई के नेतृत्व में सैन्यवादियों ने असैनिक कुओमिंतांग से सत्ता हथिया ली। युवा एवं प्रभावी नेता सुग चिया ओरन, जिनके नेतृत्व में कुओमिंतांग ने विधानसभा चुनाव पूर्ण बहुमत से जीते थे, की हत्या कर दी गई। सेना चीन में इतनी शक्तिशाली बन गई थी कि ऐसे वातावरण में असैनिक राजनीतिक दल का भविष्य अंधकार में प्रतीत होता था। सुन यात्सेन ने स्वयं को सत्ता से अलग कर लिया तथा पेचिंग, जो सत्ता का केंद्र था, से दूर कुओमिंतांग का पुनर्गठन करने का प्रयास किया। 1918 ईस्वी में युवान शरखाई की मृत्यु तथा कुओमिंतांग 1918 ईस्वी में युवान शरखाई की मृत्यु तक कुओमिंतांग अस्त व्यस्त रही। कुछ हद तक इसने अपने पहले के गोपनीय लक्षण भी धारण कर लिए थे। उदाहरणार्थ, सदस्यों को गुप्त तथा नकली नाम दिए गए, वफादारी केवल नेता सून के प्रति सुनिश्चित की गई और दल की बैठकें गोपनीय कर दी गई थी। 1916 ईस्वी के बाद कुओमिंतांग ने स्वयं को अच्छे वातावरण में पाया। सांस्कृतिक आंदोलन जड़ पकड़ रहा था तथा पश्चिमी विचारों का प्रभाव चीन में बढ़ रहा था। 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति, जिसके द्वारा सोवियत संघ की स्थापना हुई थी, ने चीनी युवकों पर गहरा प्रभाव डाला। सुन यात्सेन स्वयं भी रूसी क्रांति तथा व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व से अत्यंत प्रभावित हुए थे। सुन यात्सेन के व्यक्तित्व को जाने बिना कुओमिंतांग को सही प्रकार से समझना संभव नहीं है। कहा जाता है कि सुन यात्सेन क्रांतिकारी एवं पश्चिमी प्रजातंत्रवादी सिद्धांतों के सम्मिश्रण थे। उनके क्रांतिकारी स्वभाव तथा प्रजातंत्रीय झुकाव के आपसी आदान प्रदान के कारण कई बार उनके व्यक्तित्व में द्वंद्व देखा गया, लेकिन ऐसा 1919 ईस्वी तक ही था तथा उसके बाद उनके व्यक्तित्व का क्रांतिकारी पक्ष हावी रहा। वह अब किसी न किसी प्रकार से पुरानी सत्ता की जड़ें उखाड़ कर उसकी जगह अपने दल को स्थापित करना चाहते थे। सुन सोवियत संघ तथा कोमिंतर्न के काफी निकट आ गए। हालांकि जहां तक विचारधारा का संबंध है, उन्होंने मार्क्सवाद लेनिनवाद का एक तरह से कभी समर्थन नहीं किया था, लेकिन जब सोवियत संघ ने स्वयं चीन पर थोपी गई असमान संधियों को समाप्त कर दिया तो उस देश ने सुन का मन मोह लिया। इस प्रकार कुओमिंतांग तथा कोमिंतर्न के बीच निरंतर सहयोग तथा तालमेल की क्रिया आरंभ हो गई। 1924 ईस्वी में हुए कुओमिंतांग के पुनर्गठन से 1924 ईस्वी में हुए कुओमिंतांग के पुनर्गठन में सोवियत प्रभाव के प्रमुख भूमिका निभाई। 1924 ईस्वी में हुए कुओमिंतांग के पुनर्गठन में सोवियत प्रभाव ने प्रमुख भूमिका निभाई, लेकिन इसके साथ साथ उभरते हुए साम्राज्यवाद तथा परंपरा विरोधी छात्र आंदोलन का भी विशेष योगदान रहा। सुन यात्सेन का मुख्य उद्देश्य अपने दल को नया स्वरूप प्रदान करना था, ताकि उनकी क्रांति शीघ्र ही सफलता प्राप्त कर ले। राजतंत्र का पतन ही एक नया चीन बनाने के लिए काफी नहीं था। उन्हें इस बात का एहसास था कि साम्राज्यवादी एवं योद्धा सामंतवादी ताकतों से जोरदार टक्कर लेनी पड़ेगी। वह रूसी साम्यवादी दल की सफलता के कारणों से पूर्णतः परिचित थे तथा इसलिए इस दल के संगठन और तकनीकों की प्रशंसा करते थे। उनका विचार था कि यदि उनके दल में भी इस प्रकार की शक्ति एवं क्षमता आ जाए तो शेष बातों का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाएगा। वह साम्यवाद के समर्थक नहीं थे, किंतु इस दल के कुओमिंतांग पर किसी प्रकार के प्रभाव से भी चिंतित नहीं थे। वह केवल एक ऐसा सहायक चाहते थे जो उनके दल के संगठनात्मक पहलुओं को प्रभावित कर सके। वह अपने दल के लिए एक शक्तिशाली एवं विश्वसनीय सैनिक समर्थन के लिए उत्सुक, वह सोवियत सलाह एवं सहायता के भी इच्छुक थे। इस नई व्यवस्था एवं परिस्थितियों के फलस्वरूप सुन के तीन जन सिद्धांतों में भी कई परिवर्तन आए। दूसरा मुख्य परिवर्तन था कुओमिंतांग का 1924 ईस्वी में पुनर्गठन। इसके तुरंत पहले सुन यात्सेन और कोमिंतर्न के प्रतिनिधियों के बीच समझौते हुए। इसके साथ ही कोमिंतर्न द्वारा चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का एक नया दौर आरंभ हुआ। कुओमिंतांग का पुनर्गठन प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में 30 जनवरी 1924 ईस्वी को हुआ। पुनर्गठन के मुख्य आधारभूत लक्षण दल के आयोजित संविधान में शामिल थे। यह तय किया गया कि दल की बैठकें महीने में 2 बार बुलाई जाएंगी तथा 2 समितियां, पहली कार्यकारिणी एवं दूसरी निरीक्षक स्थापित की गई। दल की आधारभूत इकाई कुछ सदस्यों की एक छोटी सी केंद्रीय समिति थी। कुओमिंतांग का ढांचा अब एक पिरामिड की तरह सोवियत साम्यवादी दल से मिलता था। सरकारी ढांचे के चीन के भौगोलिक विभाजन के आधार पर कुओमिंतांग की शक्ति को 4 स्तरों में आयोजित किया गया। सबसे नीचे छयू, उसके ऊपर शियान, फिर प्रांतीय स्तरों पर संगठन और पिरामिड की चोटी पर केंद्रीय संगठन था। इन चारों स्तरों पर संगठन की एक कार्यकारिणी और एक निरीक्षक समिति होती थी। इन समितियों को छयू के स्तर पर सदस्यों द्वारा सीधे और ऊंचे स्तर पर प्रतिनिधि मंडल द्वारा चुना जाता था। छयू दल की सबसे छोटी कार्यरत इकाई थी, लेकिन इसके नीचे इनकी शाखाएं भी थी। इसके साथ साथ कुओमिंतांग में कुछ विशेष संगठन भी थे, जिनके कारण पिरामिड का सही रूप निश्चित करना कुछ कठिन था। वह सदस्य जिनका कोई अस्थायी ठिकाना नहीं था, जैसे कि रेलवे कर्मचारी तथा नाविक, उन्होंने स्वयं को विशेष संगठनों में आयोजित कर रखा था और वह सीधे केंद्रीय संगठन के नियंत्रण में थे। कुओमिंतांग के प्रवासी सदस्यों का संगठन भी कोई विशेष ढंग से नहीं किया गया था और वे आम तौर पर केंद्रीय संगठन के नियंत्रण में ही आते थे। लेकिन सबसे अद्भुत दलीय संगठन सशस्त्र सेनाओं, स्थल सेना, नौसेना तथा वायुसेना का था। जिन सभी के अपने संगठन थे, उनका अपना अलग पिरामिड था जो सीधे केंद्रीय संगठन के नियंत्रण में कार्य करता था। दल के संविधान के अनुसार केंद्रीय कांग्रेस और उसके स्थापित होने पर केंद्रीय कार्यकारिणी समिति दल में शक्ति के उच्चतम केंद्र थे। केंद्रीय सलाहकार समिति के पास केवल अनुशासन और वित्त से संबंधित मामले थे। यह सब रूसी साम्यवादी दल की सन 1924 ईस्वी की स्थिति पर आधारित था। कुओमिंतांग एवं सोवियत संघ के बीच आपसी हमदर्दी के कारण 1921 ईस्वी में बने चीनी साम्यवादी दल के साथ कुओमिंतांग का गठबंधन हुआ। इस गठबंधन को संयुक्त मोर्चे का नाम दिया गया। प्रत्यक्ष रूप में यह साम्राज्यवाद विरोधी और योद्धा सामंतवाद विरोधी शक्तियों का संयुक्त मोर्चा था। हालांकि विचारधारा के स्तर पर कुओमिंतांग और चीनी साम्यवादी दल एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थे, फिर भी दोनों ने लगभग 3 वर्षों तक आपसी गठबंधन को बनाए रखा। इस गठबंधन के मुख्य निर्माणकर्ता सुन यात सेन थे। 1925 ईस्वी में उनकी मृत्यु तथा कई अन्य कारणों की वजह से संयुक्त मोर्चे में दरारें पड़ने लगी। कुओमिंतांग के नए नेता चियांग चियेश्र, जो एक भूतपूर्व सैनिक थे, सुन यात सेन की तरह उदार दिल के नहीं थे और उन्होंने 1927 ईस्वी में शंघाई में साम्यवादियों का बड़ी संख्या में कत्ल करवा दिया। अब तक चियांग ने अपनी सैनिक स्थिति को भी मजबूत बना लिया था और उन्होंने योद्धा सामंतों के विरुद्ध अपना उत्तरी अभियान आरंभ किया। काफी हद तक इस अभियान की मदद से चियांग ने चीन के अनेक क्षेत्रों को योद्धा सामंतों के कब्जे से मुक्त करवा लिया। इस प्रकार चीन का सैन्य एकीकरण कुओमिंतांग के हाथों शुरू हुआ। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि अभियान के दौरान चीन को कोमिंतर्न की सहायता और सलाह मिलते रहे।